फिर ये नाम अगर हम कुराने पाक में देखें तो बराह रास्त तो ये नाम बस एक जगह आता है डायरेक्ट, ठीक है, अल्लाह ताला का ये नाम सिर्फ एक जगह आता है, लेकिन जिक्र इसका मुख्तलिफ अंदाज से तीन जगह दिखता है। मसलन सूरत अलनाम 114, अफ गैर अल्लाह यब्तगी हकमन वहुवल्लज़ी अनज़ल इलैकुमुल किताबा मुफस्सला, तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि इसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी है। क्या पता चला ओ मक्का वालो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता अल्लाह का कुरान, अल्लाह की शरीयत, ये तुम्हारा अपने बाप दादाओं के नाम पे रस्मी दीन ही तुम्हें पसंद है, तो फिर तुम जानो और तुम्हारे काम, मैं अल्लाह को छोड़ के नहीं कहीं जा सकता। तो क्या पता चला कि इंसान को इतना यकीन होना चाहिए। देखिए हम बड़ी जल्दी अपने फैसले बदलते हैं, ढिलमिल यकीन, लोग तो अल्लाह की पनाह, पल में तोला पल में वजह, जो कोई कहते हैं ना वही ठीक है, दूसरा कोई उसे उलट रहा है तो हाँ ये भी आप भी ठीक ही कहते हैं। अल्लाह से एक दुआ कीजिए आज कि अल्लाह पहले तो मुझे बसीरत दे, साहिब नज़र बना, दूर रस बना, फिर मुझसे सही फैसला करा और पत्थर की तरह जमा दे मुझे मेरे फैसलों पे। अगर आपको लीडरशिप पे खड़ा होना है आपको फैसलों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एक फैसला मुल्कों के तकदीरें और उनके मुकद्दर खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। देखिए पायलट का एक हल्का सा फैसला 200-300 पैसेंजर्स की जान ले सकता है, ड्राइवर की छोटी सी गलती, मुड़ते मुड़ते यहां से नहीं जरा बाहर से कट ले लूं पहाड़ी जगह में जाते हुए नीचे खाई में जाएगी, बस एक मिनट क्या दे, मिनट की देरी सवेरी से ट्रेन वाला अगर गाड़ी को ना रोके तो हो सकता है कि राह चलता पटरी को पार करता हुआ बंदा दुनिया से चला जाए। जिंदगी में ये मांगिए, डिसाइसिव बनिए, और कुछ लोगों का इतना बड़ा मसला है फैसला नहीं कर पाते। मांगने ली दुआ, ये दुआ मांगी आप, हिकमत भी दे फैसले भी दे, और इसके लिए हजरत इब्राहिम की दुआ याद कर ले कि रब्बी हबली हुक्मन, रब्बी हबली हुक्मन, ये दुआ इस नाम के साथ जोड़ ले, अल्लाह मुझे हुक्म दे, रब्बी हबली हुक्म वल हिकनी बिसालिहीन वजली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन। तो फैसलों के बगैर तो ढील मिले, जैसे एक मेडिकल प्रोफेसर था, उसने अपने स्टूडेंट्स को एक थीसिस दिया कि अगर तुम्हारे पास फौरन इमरजेंसी में एक शख्स लाया जाए जिसको हार्ट अटैक हो चुका है तो तुम क्या करोगे। सब ने बताया ये किया वो किया, ये गोली दूंगा ये करूंगा वो करूंगा। एक ऐसा था जरा ढीला फैसला करने वाला बंदा, कहेंगे हम जैसे एक मैं उसको डिस्प्रिन दूंगा, उसकी जुबान के नीचे फलां गोली रखूंगा। तो आप पता डॉक्टर ने क्या कहा, जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि आपने इलाज जो बताया ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बुरी खबर आपको सुनानी है, क्या आपका मरीज 30 सेकेंड पहले फौत हो गया। मुराद क्या था कि आपने फैसला करने में 30 सेकेंड जाया कर दिए, पहले करते थे मरीज बच जाता अल्लाह के हुक्म से। याद रखिए जरा सी गलती बंदे को कहाँ से कहाँ फेंकती है, फैसले ठीक कीजिए अपने। हम अपनी फैसलों की चक्की में पिस रहे हैं, ये खाऊं कि ना खाऊं, मेरे स्टमक के लिए ये ठीक है, यहाँ जाऊं कि ना जाऊं, और कभी करना होता है और हम नहीं करते और हम नुकसान पाते हैं। फिर इसके बाद देखिए सूरत मोमिन आयत 12 में आता है, फल हुक्म लिल्लाहिल अलीयिल कबीर, यहाँ लफ्ज़ हकम नहीं लेकिन अल्लाह का अमल लिखा हुआ है हुक्म देने का, यानी अब फैसला अल्लाह बुजुर्गो बरतर के हाथ में है। और सूरत 3 आयत 8, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है, बोलिए बला क्यों नहीं, वो सबसे बड़ा है। तो फिर कहिए खुद को कि अल्लाह का फैसला अटल है। इसी तरह सूरत यूसुफ आयत 21 में भी इस नाम की तरफ इशारा मिलता है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नासी ला यालमून, अल्लाह अपना काम करके रहता है मगर अक्सर लोग नहीं जानते। चलिए जरा इस पे करूं बात, यूसुफ के भाइयों का क्या फैसला था, इसको कुएं में डाल दो, झूठ सच मिला जुला कर ले गए कुएं में फेंक दिया, कोई आता जाता ले जाएगा गिरा पड़ा बच्चा समझकर, ये था भाइयों का फैसला। और अल्लाह ने उस फैसले को 30-40 साल के अंदर किस तरह बदला, वही भाई जिन्होंने आखिरी बार भाई को देखा तो कुएं में फेंका और उसके रोने की आवाज सुनी कि ना सुनी पता नहीं हमें, और जब मिले तो वो अजीज़े मिस्र बन चुका था, मिस्र का वजीर खजाना। ये है अल हकम, वल्लाही सारी दुनिया आपको कुएं में डाल दे, आपको वो भाड़ में डाल ले, क्या क्या हमारी जुबान की बातें, थक्के दे दें लोग, प्लॉटिंग कर लें, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह ग़ालिब है। मक्का वालों का क्या फैसला था नबी के बारे में? घर का हिसार क्यों किया? चलो एक दफा तो इनका बदला ले, सारे मिलकर जमा होते हैं, बाद में दियत दे देंगे। एक मारेगा तो एक मरेगा, तो सबसे कौन टकराएगा? तो खून माफ हो जाएगा पैसे दे के, तो इस मसले से अपने आप को फारिग करें। अल्लाह ने क्या किया? वजालना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दन। यकीन करें, अल हकम पे आपका ईमान है ना, तो आपके आज के बाद सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे अपने भाई बहनों से। उसका रिश्ता नहीं लिया, उसका नहीं दिया, हाय मंगनी तोड़ दी, हाय मेरी बेटी की नाकदरी कर दी, हाय उनका बेटा जालिम, हाय ये सारी जिंदगी नहीं रोनों में गुजार दी, हमने दुनिया में क्या करके जाना। सच बताएं, हम अपने फैसलों पे अपने आप को बुरा नहीं कहते? हाथों से गिरे लगाते हैं, दांतों से नहीं खुलती, क्योंकि अल हकम को मानते नहीं है फैसलों वाला। अल्लाह सुबहान तआला जो फैसला करके रहता है वो हो करेगा। वला किन अक्सर अन्नास ला यालमून। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फैसला किया। अल हकम का फैसला क्या था? वकुल ना या नारु कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। ए आग ठंडी हो जा, और इतनी भी ना होना, बस ठंडी ठंडी मीडियम रखना मेरे इब्राहिम के लिए। अब बोली किसका फैसला चला? अल हकम का चला। खंदक के मौके पे गज़वे अहज़ाब, जिसको आप कह लीजिए, क्या था फैसला मक्का वालों का, यहूद का, बदवियों का, गतफानियों का, 8 10 12 कबीले मिल मला के हुम हमा के आए? क्या फैसला था उनका कि आज एक दफा सारे मिल के जोर लगा के खत्म ना करें? तो अल्लाह का फैसला क्या था? अल हकम का फैसला क्या था? आंधियां चलाई अल हकम ने, फैसला साफ हो गया, आपस में फूट पड़ गई। जो कट जोड़ ऐसे कच्चे होते हैं ना, वो कभी नहीं निभते, बस वो 4 दिन की खेल ही होते हैं, और उसके बाद फिर लोग उसके बारे में जो भी कर ले। अल्लाह ने उनको ऐसी मुंह की चोट दी, पलट कर ऐसे गए, बाद में रुस गए, नाराजगी हो गई, जैसे हमारे यहाँ शादियों के बाद लोग रुसे रुसे फिरते हैं, नाराज हो गए। सुलह हुदैबिया के मौके पे मक्का वालों का क्या फैसला था? जो पढ़ रहे हैं उनको तो अब समझ आती होंगी मेरी बातें, दिल दिमाग भी वो है मेरे तपने, कि एक दफा निकालो, हम क्यों इनको आने दें, चलो जाओ। अल्लाह ने कहा बस अब तुम्हारे दिन गिनेंगे, तुमने मेरे नबी और उसके 1800 1700 1400 लोगों को रोका नहीं है, तुमने अपने फैसले करवा लिए। सिर्फ उसके 3 साल के अंदर अल्लाह ने नबी पे आयत नाजिल कर दी थी कि इन्नमल मुशरिकुन नजस, ये मुशरिक नजस है, इस साल के बाद वापस इस मक्का में ना आए। वो सूरत खोल लीजिए, तौबा की शुरू की आयतें। तो अल हकम के फैसलों को कबूल कीजिए। आज के बाद अपने शोहर, अपनी सास, और इवन अपने बच्चे और अपने ससुराली रिश्तेदार, इनमें से किसी को बुरा न कहे, कहिए ये अल्लाह का फैसला था, आपकी शादी इधर ही होनी थी, इसी औरत ने आपकी सास बनना था, इसी मर्द ने आपका शोहर बनना था, यही बच्चे मिलने थे आपको, नखट्टू हैं तो करें फिर, आपको यही मिलने थे, निकम्मे हैं तो यही मिलने थे, भाई ऐसे ही मिलने थे आपको, ना देखने वाले, हाल ना पूछने वाले, यही मिलने थे मुझे, बहने ऐसी बेमुरौवत मिलनी थी, आपकी बेटी को ले जाकर सताने वाली यही मिलनी थी, करें क्या करते हैं, किधर लड़ेंगे आप, किस किस से लड़ेंगे आप? यकीन करें, आज हमारी अकीदा तौहीद अगर दुरुस्त हो चुका होता ना, ये अल हकम हमने सुन लिया होता 10 12 साल की उम्र में, या सुना दिया होता, तो हमारी जिंदगी खुशगवार होती। 90% झगड़े मियाँ बीवी के फैसलों को ना मानने पे होते हैं। मैंने ये कहा, आपने ये किया, मैंने ये सोचा, आपने ये सोचा। आप देखिए, रिश्ता जुड़ता है कितने प्यार मोहब्बत से, अल्लाह की पनाह, इस एक फैसले के निभने तक के बीच में कितने पवाड़े पड़ चुके होते हैं। हम बड़ी बेमुरौवत लोग हैं, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी है ज़िंदगी। किसी से मेरी बात हुई, मैं जानती थी कई साल से वो किसी बहुत चक्की में पिस रही थी, कहने लगी मैंने डिवोर्स ले लिया, और उसके बाद कहती अब मैं मुतमईन हो गई। मैंने कहा आपने इतना देर से फैसला किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी इसलिए थोड़ी है कि कुड़ कुड़ के गुजार दें, जल जल के गुजार दें आप। अल्लाह ने आपको ज़िंदगी कुछ काम करने के लिए दी थी, आप तो भी अपने कामों में जी रही हैं, आप बेचारी कैसे आगे चलती? बहुत अच्छा किया आपने, एक फैसला करना पड़ता है। हमारे यहाँ तलाक को कहते फैसला हो गया, निकाह भी फैसला, तलाक भी फैसला, दो बच्चे भी फैसला ही है एक, तो अल्लाह वो दोनों को ले जाए तो फिर किधर रह गया आप, दो बच्चे खुशहाल कराना किधर रह गया? फिर इसी तरह आप देखिए, सूरत अलनाम की आयत 57 में आता है, कुल इन्नी अला बैयिना मिन रब्बी वकज्जबतुम बिही मा इंदी मा तस्तअजिलून बिही इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह यकुस्सुल हक वहुवा खैरुल फासिलीन। कहो मैं अपने रब की तरफ से एक दलील रोशन पर हूँ, तुमने इसको झुटला दिया, मेरे इख्तियार में वो चीज़ नहीं है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो। फैसले का सारा इख्तियार अल्लाह को है, वही अमरे हक बयान करता है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला। ये किस फैसले की बातें हैं? अजाब के आने की और कियामत की भी बातें हैं। हर वक्त कहते थे क़यामत कब आएगी, अच्छा अगर हम झूठे हैं तो फिर हम पे अज़ाब कब आएगा, आप कहते हैं ये होना है वो होना है, अच्छा लाओ फिर अज़ाब, ये अज़ाब मांगते थे। अल्लाह का नबी कहता है ये भी नहीं मैं दूंगा, ये अल्लाह ही देता है। तो लिखिए अज़ाब के फैसले भी अल्लाह ही के हाथ में, बीमारियों के, वबाओं के, परेशानियों के, जंगों के फैसले भी अल्लाह के हाथ में। और इसी तरह से सूरत अल-कहफ की आयत 26, मा लहुम मिन दूनिही मिन वली वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, यानी अल्लाह सुबहाना ताला की इबादत की तरह हुक्म में भी कोई शरीक नहीं है, क्योंकि ज़मीन व आसमान की मखलूकात का कोई खबरगीर इसके सिवा नहीं, और वह अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। अल्लाह इज ऑल इन वन, अपना हर फैसला वो खुद करता है, उसके फैसलों में कोई शामिल हो नहीं सकता। और इस पे तारीख का एक वाक्या है, मिस्र के हाकिम थे एक मोतिस बिल्लाह के ज़माने में, अहमद बिन तोलून उनका नाम आता है, और इससे पहले वो तुर्की बादशाह के पास रहते थे। यानी तारीख का एक वाक्या है, किस्सा मुख्तसर यह है कि तोलून जो था उसने ने अपना बेटा बना लिया। एक दिन उसने उनको किसी काम से दारुल इमारा भेजा, किसी भी जगह पे। उन्होंने बादशाह की कनीज जो थी उसको महल के एक खादिम के साथ गलत काम में मुब्तला पाया। खैर ये वापस आ गए, बादशाह के पास पहुंचे, कोई जिक्र ही ना किया। कनीज को पता था कि इन्होंने हमें देख लिया। अब अपनी सफाई पेश करने के लिए उसने सोचा कि अब ये जाकर मेरी शिकायत करेंगे तो बादशाह मेरे पे नाराज होगा, और मैं क्यों ना इसी पे इल्ज़ाम लगा दूं। यानी उस कनीज़ ने इनके ऊपर झूठी तोहमत लगा दी। ये बिल्कुल वही वाक्या जैसे जुरैज का वाक्या। खैर अब क्या हुआ, हालांकि इन्होंने बादशाह से कोई बात ना की, कनीज़ ने आके इनके बारे में झूठ सच बात की, बादशाह ने यकीन कर लिया, फौरन इनको बुलाया, कनीज़ की शिकायत का तो जिक्र ना किया, एक ख़त दिया, मोहर बंद खत था, और कहा कि ये ख़त फलां अमीर के पास पहुँचा दो। और ख़त में उन्होंने ये लिखा था कि जो शख्स ये ख़त तुम्हारे पास ला रहा है ना, इसको गिरफ्तार करके कत्ल करो और इसका सर मेरे पास भेज दो। यानी सजा थी ये उस वक़्त में जो भी थी। अब इस शख्स को बिल्कुल नहीं पता कि मेरे खिलाफ़ एक साजिश हो चुकी है। ख़त लेके चल पड़े, रस्ते में उसी कनीज़ से मुलाकात हो गई। कनीज़ होशियार थी, कहने लगी कि मैं ज़रा सा कुछ ऐसा इसके साथ दाव पेच खेलूँ कि बादशाह मुझे देख ले तो उसको और भी यकीन आ जाए कि मेरी शिकायत सच्ची थी। इसने उसको बातों में उलझाने की कोशिश की और कहा कि मुझे एक ख़त लिखवाना है, आप ख़त लिख दें, और जो बादशाह का ख़त है ना वो लाएं, किसी और को मैं देती हूँ, वो दे आता है। उसने बादशाह का ख़त उसी खादिम के हवाले कर दिया जिसके साथ उसने बुराई की थी। वो लेकर वहाँ पहुँचा, अमीर ने ख़त खोला, उसमें लिखा था जो बंदा ख़त लाएगा उसको कत्ल करा दो और उसका सर उसके पास भेज दो। उसने ऐसे ही किया। अब जब सर सामने आया तो बादशाह हैरान हो गया, अहमद को बुलाया, कहने लगा माजरा क्या। जब बात खुली इसने कहा मैं बेगुनाह हूँ। कनीज़ को बुलाएगा, वही जो किस्सा यूसुफ में हुआ था। कनीज़ ने एतराफ़ किया और उसके बाद फिर बादशाह ने उसकी पहले से ज़्यादा इज्जत की, अल हकम ने किसी पे ज्यादती होने से बचा लिया। और याद रखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला कभी भी किसी पे ज्यादती नहीं होने देते। दुनिया की अदालतों में बहुत झूठे फैसले भी होते हैं, आज हमारे मुल्कों में तो खास तौर पे। फिक्र ना कीजिए, पहले तो दुआ करें अल्लाह किसी मुकदमे में ना डाले, कोई आपकी जायदाद पे कब्जा ना करे और कोई इस तरह के झूठ सच ना बोले। लेकिन अगर कहीं हो भी गया तो वो ज़ात मौजूद है, जब तक वो आपके साथ है आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल हकम के जो फैसले हैं ना, उसमें एक और बात बड़ी खूबसूरत है, हलाल को हराम और हराम को हलाल का फैसला अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। आज के दौर की एक बड़ी प्यारी शख्सियत है, उस्ताद हैं इमाम शनकीती, उनका एक कॉल सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं कि चूंकि हर चीज़ का फैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े इख्तियार में है, इससे आप ये बात बखूबी समझ सकते हैं कि बेशक हलाल चीज़ वही है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल करार दिया, और जो चीज़ अल्लाह ताला ने हराम फरमा दी दरअसल वही हराम है, और हकीकी दीन वही है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए मुकर्रर किया। इसके अलावा बाकी सारे दीन बातिल हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि अल्लाह सुबहान तआला की ज़ात अपनी अजीम सिफात की वजह से इस बात की मुस्तहिक है कि हर चीज़ में इसी का फैसला अटल हो, क्योंकि कोई बशर ऐसा नहीं जिसमें ऐसी सिफात मौजूद हों जो इसके खालिक की सिफात के मिसल हों, हत्ता कि वह अपने रब के साथ हुक्म के फैसले में शरीक हो जाए। तो साबित किया हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत हुक्म में कोई गैर शरीक नहीं। यानी जिस तरह आप कहते हैं ना कि शिर्क नहीं करना, तो फैसले किसी और के समझ लेना ये भी शिर्क फिल हुक्म होगा। अल्लाह इससे बहुत बुलंद है कि कोई उस जैसा फैसला भी कर सके और जितना जैसे अल्लाह चाहे, और आप देख लीजिए कि अल्लाह सुबहान तआला के फैसले, हत्ता कि नबी को भी इख्तियार नहीं है अल्लाह के फैसलों को बदलने का। सोचिए कुरान में कोई दलील है, पहली आयत है किसी सूरत की, चलिए किसी पारे की आखिरी सूरत भी अब तो याद कर लीजिए, लीमा तो हर्रिमुमा हल्लल्लाहु लक। अल्लाह के नबी ने अपनी अजवाज की खुशी की खातिर शहद को अपने ऊपर हराम करना चाह, अल्लाह ने बीच में रोक दिया कि आप कैसे कर सकते हैं, मैंने शहद हलाल किया, आप कैसे हराम करेंगे। तो जब अल्लाह फैसला कर लेते हैं ना, तो उसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता, कोई पसोपेश नहीं कर सकता, कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिही ही वह हुवस सरीउल हिसाब। अल्लाह फैसला करता है और कोई उसके फैसले को पीछे डाल ही नहीं सकता। सूरह रात की आयत 41 है ये। तो कायनात में बारिश होनी नहीं होनी, बर्फ पड़नी कि नहीं पड़नी, गर्मी जल्दी आनी, सर्दी आनी, सूरज कब, चांद कब। आप लेट हो रहे हैं, आप कहते हैं हाय अल्लाह करे सूरज लेट निकले, मेरी फजर निकल जानी है, मैं जरा और सो लूं। सूरज जल्दी नहीं निकलेगा, देर से नहीं निकलेगा। आप कहते हैं लेट हो गया हूँ, कभी घड़ी रुक जाए, जहाज पकड़ना है, बारिश ना हो। आपने ओपन एयर में कोई प्रोग्राम रखा हुआ है, हाय धूप पड़ी है, अल्लाह आज धूप ना हो, साये नहीं कर सकते। ये सारे कौनी फैसले उसके इख्तियार में, आप उसके किसी फैसले को पीछे नहीं डाल सकते। ला युसलु अम्मा यफलु वहुम युसलून। उससे किए गए फैसलों के बारे में कोई नहीं पूछ सकता, हाँ वो सबसे पूछ सकता है। सूरत अंबिया की आयत 23 है। अपने लिए इस चीज़ को गोल बनाइए कि अल्लाह ताला के फैसलों पे मैंने राजी रहना है। फिर आप देखिए कि अहादीस की रोशनी में ये नाम कैसे आता है। तो पहली बात है कि अल हकम, चूँकि अल्लाह का नाम है ना, तो कोई अपनी कुनियत नहीं रख सकता। जैसे अल्लाह के नामों पे नाम हो जाते हैं ना लोगों के, तो एक वाक्या है असल में, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अबू दाऊद की रिवायत नोट कीजिए, 4955 है। अबू शुरैह हानी कंदी कहते हैं कि जब वो रसूलुल्लाह के पास अपनी कौम के साथ वफद में आए, यानी किसी भी वफद में ये साथ आए थे, और आपको ये इत्तला मिली कि उन्होंने अपनी कुनियत अबुल हकम रखी हुई है, आपने इनको बुलाया और फरमाया, हकम वाली ज़ात यानी हुक्म वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और इसके लिए फैसला करना है, आपने अपनी कुनियत अबुल हकम क्यों रखी। उन्होंने कहा असल में अल्लाह के नबी, जब मेरी कौम का किसी चीज़ पर इख्तलाफ होता है ना, तो फैसले के लिए वो मेरे पास आते हैं और दोनों फरीकैन मेरे फैसलों पर राजी हो जाते हैं। यानी अच्छे थे, डिसीजन मेकर थे, जैसे हकमन बिन अखली हावर हकमन नखली ही है ना, कि बीवी और शौहर की ना बनती हो तो कोई तीसरा पंचायत बिठा लीजिए, कोई तीसरा आ जाए, तो कहा लोग मेरे फैसलों की कदर करते हैं इसलिए लोग मुझे अबुल हकम कहते हैं। आपने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, यानी आपने उसको बुरा नहीं कहा, लेकिन कहा तुम्हारा कोई बेटा है? कहा जी मेरे 3 बेटे हैं, शुरैह, मुस्लिम और अब्दुल्ला। आपने कहा सब में से बड़ा कौन दा है? कहा शुरैह। कहा ठीक है, आज के बाद तुम अबू शुरैह हो, अपनी कुनियत बदल लो। तो अल्लाह के नबी का अपने सहाबी की कुनियत को तब्दील कराना इस बात की दलील है कि इस इसम को कुनियत बनाना मकरूह है। देखिए अंदाज कितना प्यारा है, हम तो पहले तनकीद करते और फिर कोई बातें करते। वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ये नाम नहीं रखना चाहिए, इससे इंसान का कह लीजिए कि मामला बदल जाता है। एक और रिवायत लीजिए, सही मुस्लिम 7089 है। अल्लाह ताला किसी मोमिन पर एक नेकी के लिए भी जुल्म न करेगा, इसका बदला दुनिया में देगा और आखिरत में भी देगा, और काफिर को इसकी नेकियों का बदला दुनिया में दिया जाता है, यहाँ तक के जब आखिरत होगी तो इसके पास कोई नेकी ना रहेगी जिसका बदला वो दिया जाए। यानी अल हकम जो फैसले भी करेगा लोगों के मामलात में, वो दुनिया आखिरत दोनों के हिसाब से अदल और इंसाफ वाले होंगे। इस तरह एक तीसरी रिवायत लीजिए, इब्ने माजा की रिवायत, सुनन इब्ने माजा 2314। अमर बिन आस कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना, जब हाकिम फैसला इज्तिहाद से करे, इज्तिहाद समझते हैं ना, जिसमें डायरेक्ट कुरान सुनने से कोई चीज़ ना मिल रही हो, तो फिर बाकी चीज़ों को शवाहिद को इधर से उधर जमा करके कर लिया जाए फैसला, तो वो इज्तिहाद कहलाता है। इसमें गलती भी हो जाए तो इसमें भी अल्लाह की रहमत से अजर है। फरमाया जब फैसला इज्तिहाद से करे तो सही बात तक पहुंच जाए तो दोहरा अजर मिलेगा, और जब फैसले की कोशिश करे और गलती हो जाए तो एक अजर मिलेगा। बस आप सफर में थे, आपने नमाज अदा करनी है, अब आप किधर पढ़ें, आपके पास कोई कंपस नहीं, नथिंग। अब आप सूरज को देखते, चांद को देखते, पीछे से कोई समंदर है देखा, सारी पूरी कोशिशें कर करा के आपने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के बैठ गए, बाद में किसी से जिक्र किया जो वहां रहता है, किधर था? आपने कहा इधर। अगर आपने उधर ही पढ़ी तो आपको दोहरा अजर, एक कोशिश का और एक सही नतीजे पे पहुंचने का, और दूसरा अजर किसका? सही तरफ जाने का। गलत पढ़ के आ गए आप, क्या होगा? समझ गए आप खुद ही कि जब गलत भी पढ़ा तो आप कोशिश का एक अजर फिर भी मिलेगा, हाँ सही फैसला ना होने का इसकी तरफ आपको अजर नहीं मिलेगा। ठीक है, कोशिश बहरहाल करनी है। फिर सिलसिले सहीहा की रिवायत है 1517 कि अल हकम का फैसला क्या है कि अपनी औलाद के माबैन अदल कीजिए। अनस फरमाते हैं कि एक शख्स नबी सल्लम के पास बैठा हुआ था, इसके पास उसका बेटा आया, इसने उसका बोसा लिया यानी किस किया उसको, और इसे अपनी गोद में बिठा लिया। इसके बाद इसकी बेटी आई, इसने उसे अपने साथ बिठा लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तूने इसके दरमियान इंसाफ क्यों नहीं किया, यानी बेटे का बोसा लिया और बेटी का नहीं लिया। यानी औलाद के दरमियान फैसले अदल और इंसाफ से कीजिए। और फिर अल हकम कियामत के फैसलों का मालिक है, अल हाकिम। क्यामत के दिन इंसान दो गिरोहों में तकसीम होंगे, एक वो जिनके लिए सआदत का फैसला यानी जन्नती होने का, और एक वो जिसका जहन्नमी का फैसला है। अब आप खुद देख लीजिए कि आप अपने लिए क्या समझते हैं। अल्लाह के नबी ने एक मौके पे एक रजिस्टर दिखाया लोगों को, फिर कोई झगड़ा हो गया तो उसमें चुकाने में लगे और वो रजिस्टर आपके हाथों से गायब हो गए। फरमाया, मुझे जन्नती और जहन्नमियों के नाम दे दिए गए थे। फिर इस तरह आप देखिए कि अल हकम हमारे तमाम फैसले अल हकम के हुक्म के मुताबिक होंगे तो काबिले कबूल होंगे। फिर इसी तरह जब जिंदगी के फैसले करें, औलाद के फैसले करें, तो अल्लाह ताला से इस्तखारा लीजिए, अल हकम से मशवरा कीजिए, फिर अल्लाह ताला उस मामले को अपने हाथ में ले लेगा। आसमान से बारिश का फैसला है, आप आज बारिश देखकर अपनी पिकनिक रखते हैं, बाद में पता चलता है कि वेदर चैनल ने कुछ और कहा तो हो गया, तो इंजॉय कीजिए, बारिश में भी पिकनिक मना लीजिए, कुछ नहीं होता। मसाए पर मुश्किलात जब कभी ज़िंदगी में आए तो उस वक़्त कहा करें कि ए अल हकम, मैं तेरे इस फैसले पे राजी हूँ। देखिए जितना भी पढ़ते जा रहे हैं ना, मुझे तो सबसे बड़ी नेकी यही दिख रही है, रदी तो बिल्लाह रब्बन, खुश रहिए। रोते धोते बच्चे माँ को भी नहीं अच्छे लगते, तो अल्लाह के फैसलों पर एतराज़ करते लोग अल्लाह को कैसे अच्छे लगेंगे। फिर इस तरह परेशानियों का हल किसी झूठे आमिल ज्योतिषी के पास जाने की बजाय, अगर कुछ हो ही गया, कभी ना सोचिए कि जादू हो गया, सास ने तवीज़ डाल दिए हैं, बोली अल्लाह का फैसला ही ऐसे था। अच्छा, एक कल्चर है, दिल्ली वाले कहलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोग जानते हैं उनको, उनका मुझे एक अमल बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही और अच्छी बातों की तरह। किसी से रिश्ता मांगते हैं, किसी के बेटी देखने गए, अब नहीं दिल को लगी, अब वो बात तो बड़ी, आगे वो पूछते हैं, जी क्या सोचा आपने, या लड़के वालों ने लड़की मांग ली या लड़की, कोई भी रिश्ता चलता है और इनका अब दिल नहीं आ रहा, तो वो क्या कहते हैं, जी बहन आपने कुछ सोचा, क्या सोचा, हाँ अभी अल्लाह का हुक्म नहीं है। अरे क्या हुआ, कुछ तो कहिए, बस अल्लाह का भी हुक्म नहीं है, 10 दफ़ा पूछ लेना। यानी मसलन अगर आप में से जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, पूछने के अंदाज आप सारे जानते होंगे, वो एक जुमला 10 दफ़ा बोलते हैं, अल्लाह का हुक्म नहीं है, क्या हुआ, कोई बात है, कोई बच्चा पसंद नहीं आया, क्या बात है, अल्लाह का हुक्म नहीं, ये कह लीजिए, देखिए फिर कितनी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तों से भी बड़ी झगड़े हैं। फिर इस तरह ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो अल्लाह ताला से पुकारिए, और उन पुकारने में दुआएं, अल हकम के नाम के साथ जो दुआएं और अस्कार है, पहली बहुत ही प्यारी दुआ है जो तहज्जुद की दुआओं में भी है, ऐसी मिलती हुई दुआ, तिर्मिज़ी की रिवायत है 3420, अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्रील व मीकाईल व इसराफील फातिर समावाती वल अर्दी वालिम अल गैबी व शहादती انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم। बड़ी प्यारी दुआ है, अगर आप किसी जको तक्के में हो, डबल माइंडेड है, और अकेले में रात को ये दुआ मांग के तो देखिए, ऐसे लगेगा कि आपने बहुत प्यारी हस्ती से मशवरा मांग लिया। तर्जमा सुनिए, ए अल्लाह, जिब्राइल और मीकाईल और इसराफील के रब, आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, छुपे और खुले के जानने वाले, अपने बंदों के दरमियान इनके इख्तलाफात का फ़ैसला करने वाला, ए अल्लाह, जिस चीज़ में भी इख्तलाफ हुआ है, इसमें हक़ को अपनाने, हक़ को कबूल करने की अपने इज़्ज़न और हुक्म से मुझे हिदायत फरमा, यानी तौफीक दे, क्योंकि तू ही जिसे चाहता सीधी राह पर चलाता है। अल्लाह ताला हमें इस तरह की दुआएं मांगने की तौफीक दे। फिर एक और दुआ जो सुबह शाम की दुआओं में भी आप और मैं पढ़ते हैं अल्लाह के हुक्म से, अबू दाऊद की रिवायत 5072 और तिर्मिजी में 3389 है, रदी तो बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मदिन नबीयन, मैं अल्लाह के साथ इसके रब होने पर राजी हो गया, और इस्लाम के साथ इसके दीन होने पर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनके नबी होने पर राजी हो गया। ये रज़ा ले लीजिए, सारे फैसले आपके हक़ में होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह एक और दुआ बहुत ही खूबसूरत है, वो भी और बुखारी में है 1120। अल्लाहुम्म लकल हम्दु अंत कय्यिमुस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन्न व लकल हम्दु अंत नूरुस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन्न व लकल हम्दु अंत मलिकुस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन्न व लकल हम्दु अंतल हक व वादुकल हक व लिकाउक हक व कौलुक हक वल जन्नतु हक व नारु हक والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ला इलाहा गैरुक। आप देखिए ये भी तहज्जुद की दुआओं में है, तवील दुआ है। अगर आप इसका तर्जमा पढ़ लें तो इसमें भी अल्लाह ताला के हकम और अल्लाह के फैसले करने वाली बात हो रही है। तो ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। इसी तरह अल हकम से मुतल्लिक मौजतुल हसना है, अच्छी सी नसीहत लेनी है, क्या करें इसको सुनने के बाद। पहली बात, इस बात पर यकीन रखिए कि अल्लाह का हर फैसला अदल पर है। मसाइब और दुखों में भी खैर छुपी होती है, कभी तकलीफ़ आ जाए तो उसको तलाश कीजिए। फिर इंसानी मामलात में अदल और इंसाफ से काम लीजिए। अल्लाह के अहकामात पर अमल करना है, हलाल को हलाल और हराम को हराम समझना है। खुशी से कबूल कीजिए फ़ैसलों को। इस तरह अगर कोई आपके ऊपर हाकिम है, जैसे हुक्मरान होते हैं, या आप किसी जगह हैं तो कोई आपका लीडर है, कोई आपका अमीर है, कोई आपका बड़ा है, तो उसकी फरमा बरदारी कीजिए, बड़ों की बात मानिए, फिर उनके अहकामात पे अमल भी कीजिए और अल्लाह से ये कहा करें कि अल्लाह मेरे सारे मामलात तेरे हवाले हैं, तो बेहतरीन तरीके से मुझे इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह शर के अंदर छुपे हुए खैर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। यकीन कीजिए कि जिसको अल्लाह की मार्फत मिल गई वो बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजारता है। इसी को कहते हैं रिदा बिल कदा, कि मैं हर फैसले पर राज़ी हूँ। दुआ कबूल हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मानी गई। दुआ कबूल ना हुई कोई बात नहीं, अल हकम की मानी गई। फिर आप देखेंगे कि ऐसी मनाजात में भी कितना मज़ा है, कितनी लज्जत है। फिर तन्हाइयों में शिकवे नहीं, शुक्र होता है। फिर आप अपने रब के साथ अपना मामला खूबसूरत से खूबसूरत करते रहते हैं, जलते नहीं, कुड़ते नहीं, नेमतों की कमी का एहसास नहीं, हाय उसको ये मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला। फिर आप उसके दीन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अमल में लाते हैं, इत्मीनान आपकी ज़िंदगी में आता है। फिर आप हर मामले में अपने आप को कूल रखते हैं। ये जो गुस्से का आ जाना होता है ना, ये भी बहुत सारे फैसलों को ना मानने का। बेगम बेचारी ने नमक ज्यादा डाल दिया, ये उसका फैसला था, आप इसी पे गुस्से पे आ गए। तो अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हर मामले में बेहतरीन फैसले दे। तबरानी की एक और रिवायत भी आती है कि अल्लाह मैनी असलमान व हुसन अलखुलुकी व रिदा बिलकदर, कि अल्लाह मैं तुझसे तंदरुस्ती, पाक दामनी, अमानतदारी, अच्छे अखलाक और कज़ाओ कदर पर राजी रहने का तलबगार हूँ। इस तरह इब्ने सनी एक बड़ी मारूफ किताब है, उसमें भी एक दुआ आती है इब्ने उमर से, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व माली व दीनी। तवील दुआ है, एंड का हिस्सा क्या है, अल्लाहुम्मा रद्दिनी बिकदाइका व बारिक ली फीमा कुद्दिर ली हत्ता ला उहिब्बा ताजील मा अखरता वला ताखीरा मा अज्जलता। अल्लाह अपने फ़ैसले पर मुझको राज़ी कर दे और जो मेरे लिए मुकद्दर हो गए इसी में मुझे बरकत अता फरमा दे, ताकि जो चीज़ तूने मौखर फरमा दी उसमें जल्दी ना करूँ, और जिस चीज़ को फ़िलहाल तूने मुकद्दम कर दिया यानी अब ये नहीं देनी मुझे, तो इसकी ताखीर की मैं तमन्ना ना करूँ। तो अल्लाह हमें पहाड़ों की तरह, सूरज चाँद सितारों की तरह उसके फ़ैसलों पर राज़ी कर दे। ज़मीन को अल्लाह ने बिछाने का फ़ैसला किया, ज़मीन उस पर खुश। पहाड़ों को खड़ा रहने का हुक्म दिया, वो उस पर खुश। हवाओं को सिर्फ चलते रहने का हुक्म दिया, वो उस पर खुश। पानी की लहरें पानी के ऊपर मुतमईन है, अल्लाह हमें भी फितरत शनास बनाकर इस कायनात की हर चीज़ जो आपके मेरे पास इर्द गिर्द दिखती है उसको इस नज़र से देखें कि ये मेरे मालिक का फैसला है। तो ये तो अल्लाह ताला का प्यारा नाम अल हकम। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته